मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि पिछले दो एपिसोड में मैंने जो भी बातें बताई हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बारे में एक सामान्य सी पृष्ठभूमि आपके दिमाग में अवश्य बन चुकी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं माफी चाहते हुए एक सजेशन देना चाहूंगा, और वो ये कि मेरे पिछले दो एपिसोड आप एक बार फिर से सुन लें, क्योंकि एक पृष्ठभूमि का बनना, जिसे आप चित्रकार की भाषा में कैनवास कह सकते हैं, बहुत जरूरी है कि वह आपके दिमाग में बन जाए। क्योंकि अब जो मैं आगे बातें करने जा रहा हूं, अब उसमें हम इस कैनवास में एक तरह से हमने खाका तो बना दिया है, लाइनें खींच दी हैं, अब हम उसमें रंग भरेंगे, यानी कि उसमें हम तथ्य डालेंगे, उनमें हम फैक्ट्स डालेंगे। तो अब देखिए, फैक्ट्स तो छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से जटिल भी होते हैं, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, दोहराते रहना पड़ता है, लेकिन यदि हमारे दिमाग में उसका खाका तैयार हो गया, आउटलाइंस बन गई है, तो फिर ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें उभरने लगते हैं। इससे सुनने वाले पढ़ने वाले को ही सच पूछे सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, और यदि आपके दिमाग में चीजें स्पष्ट हैं तो आइए मेरे साथ यहीं से ही आप यात्रा करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आपसे इकट्ठे एक लंबे काल को ले रहा हूं, जिसे आप कह सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के युग से लेकर के, अगर यदि आप चाहें तो नेहरू युग को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू जी के समय में जो औद्योगिक विकास हुआ है या जो औद्योगिक नीतियां हम लेकर के चले थे उसका हम 1948 और 1956 के औद्योगिक प्रस्ताव में देख चुके हैं, है ना, उस तरह से उद्योग स्थापित होते रहे। वो जो शेप लेकर के आया वो मिसेस गांधी के समय में ही लेकर के आया, इसीलिए आप चाहें तो इसे नेहरू युग से उदारीकरण के प्रारंभ तक, यानी कि नेहरू युग का मतलब हो गया कि 1947, लेकिन बेहतर होगा कि आइए हम इसे इंदिरा गांधी के युग से कहते हैं, इंदिरा गांधी के युग से लेकर के उदारीकरण के आरंभ तक। मोटे तौर पर 1965 से लेकर 1991 तक, देखिए मैं उदारीकरण का जो आरंभ है वो 1991 में हुआ था, तो इसका मतलब है कि इसमें इंदिरा गांधी का युग भी शामिल हो गया, इसमें राजीव गांधी का काल भी शामिल हो गया, और जो ढाई साल का जो भारतीय जो मुरारजी देसाई का काल था वह भी शामिल हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में वो काल कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, पहले की ही चीजें लगभग उस समय भी होती रही थोड़ी बहुत बदलाव के साथ साथ में, तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करने जैसी कोई चीज है नहीं। तो इसे आप सीधे सीधे कह सकते हैं इंदिरा युग से लेकर के उदारीकरण के आरंभ तक, या अगर आपको समय की दृष्टि से बात करनी है तो 1965 से लेकर के 1991 के मिड तक। देखिए, इस समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, चीन और पाकिस्तान के युद्ध हो चुके थे आपको मालूम है, इसके बाद फिर 1965 और 66 के जबरदस्त अकाल भारत पर पड़े थे, उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर इस समय तक जो महंगाई की दर थी, आप कल्पना करके देखिए कि वो लगभग 12% थी, महंगाई की दर आप सोच करके देखिए, यानी कि एक साल पहले जो चीज 100 रुपए की थी अब वो चीज 112 रुपए की मिल रही है। आपको मालूम है कि अभी जो महंगाई की दर है आप देखिए कि 3-4% के बीच में है, उस समय 12% थी, तो आप कल्पना करके देखिए कि अर्थव्यवस्था पर कितना जबरदस्त दबाव होगा। क्योंकि अकाल पड़ चुका था, हम खाद्यान्न पर दूसरे देशों पर निर्भर होते थे, अनाज का आयात होता था, फिर जो खाद्य पदार्थों की कीमतों की जो महंगाई दर थी वो तो इससे भी ज्यादा थी, 20% महंगाई दर आप कल्पना करके देखिए, और हमारा जो जीडीपी था, जो राजकोषीय घाटा था वो 7.3% राजकोषीय घाटा, सोचिए। अभी सरकार लगातार ये किस कोशिश में लगी है कि वो 4% के अंदर ही अंदर राजकोषीय घाटा रहे, और आप सोच के देखिए कुछ समय 7.3% था, तो अर्थव्यवस्था की कितनी बुरी स्थिति रही होगी। तो ऐसे समय में मिसेस गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं, और फिर उन्होंने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए, और उनके इन क्रांतिकारी कदमों की चर्चा अक्सर आपको आर्टिकल्स में पढ़ने को मिल जाती है। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था राष्ट्रीयकरण का, धड़ाधड़ उन्होंने कुछ क्षेत्रों के नेशनलाइज करने शुरू कर दिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि वो निजी क्षेत्र में अभी तक थे, सरकार ने उन्हें अब अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंक सभी बैंक सरकारी बैंक हो गए। 1972 में आकर के उन्होंने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब बीमा कंपनी भी पूरी तरीके से सरकार के हाथ में आ गए। कोयला क्षेत्रों का भी इसी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ ही साथ सरकार ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट बनाए। देखिए एक्ट बहुत से बनाए गए हैं, लेकिन मैं दो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट की बात यहां कर रहा हूं जो अक्सर आर्टिकल्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे और ये एक्ट आपके दिमाग में रट जाने चाहिए। दोस्तों मैं जानबूझकर इस वाक्य का प्रयोग करता हूं और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपको रट जाने चाहिए। अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि अगर ये चीजें आपके दिमाग में रही तो जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे, अगर इनका आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो आपका जो आंसर है वो बहुत वजनदार बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं इस तरह के वाक्यों के माध्यम से आपको कुछ निर्देश दे दिया करता हूं। देखिए जो पहला एक्ट आया 1969 में, उसका नाम था मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि उद्योगों को इस बात के लिए प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए कि वो मोनोपोली हो जाए, उनका बिल्कुल एकाधिकार हो जाए और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको नियंत्रित किया जा सके। ये एक्ट आया, ये आपको आर्टिकल में एमआरटीपी एक्ट के नाम से पढ़ने को मिलेगा, एमआरटीपी एक्ट, राइट। इसके बाद इसमें उन्होंने किया क्या, इसमें उन्होंने किया ये कि जो कोई भी उद्योग है, उद्योगपति है, वो अपने उद्योग का जो विस्तार है वो केवल 20 करोड़ रुपए तक कर सकेगा। 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति से अगर वो उद्योग का विस्तार करेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं, मतलब यहां आप पाएंगे एक तरह से कि उद्योगों को बौना बनाने की कोशिश की, बोनसाई का पैटर्न लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आप 20 करोड़ रुपए से अगर ऊपर जाएंगे तो नहीं हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपका एक अधिकार हो जाएगा, सीमित कर दिया आपने, ठीक है। लेकिन आपको यहां एक बात और बता दो कि बाद में जब इसके नुकसान दिखाई देने लगे तो जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इस 20 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया, खत्म नहीं किया गया, 100 करोड़ किया गया और उदारीकरण में इसे खत्म ही कर दिया गया, यही उदारीकरण है। इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया 1973 में, उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका भी उल्लेख आपको आर्टिकल्स में मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इसमें यह किया गया कि जो विदेशी निवेशक भारत में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं उन पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए और इस तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए कि उनके लिए भारत में उद्योग लगाना कठिन हो गया। अब आप इसको आज के संदर्भ में आप समझने की कोशिश कीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आए, फॉरेन के ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के हमारे यहां उद्योग लगाएं, यही तो उदारीकरण है। अब हम ये उदार बन गए, पहले हमने क्या कर दिया कि नहीं, रोक रहे हैं कि नहीं हमें तुम्हारी पूंजी नहीं चाहिए और हम अपने रास्ते को कठिन बना रहे हैं ताकि तुम यहां आकर के उद्योग न लगा सको। ये मिसेस गांधी की उस समय नीति थी। और फिर एक काम और भी किया गया कि जो उद्योग बीमार हो गए हैं, नहीं चल पा रहे हैं, उसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं उसे हम अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसा सरकार ने क्यों किया, क्योंकि देखिए समाजवादी हम विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उद्योग बंद हो जाएंगे, बंद होने के कारण जो इतने सारे वहां मजदूर काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर ये समाजवादी व्यवस्था कैसे, क्योंकि मजदूरों का हित तो हमें करना ही है और देखा भी जाना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं हम इन उद्योगों को बंद नहीं होने देंगे, सरकार उन्हें अधिग्रहित कर लेगी। और इसके साथ ही दोस्तों जो उद्योग थे उन पर ढेर सारे सरकारी प्रतिबंध लगा दिए गए, लाइसेंस राज्य और फलाना और फलाना। सरकार इस बात का फैसला करती थी कि तुम कहां उद्योग लगाओगे, कौन कौन वहां उद्योग लगाएगा, कितना उत्पादन करेगा, उसकी कीमत कितनी होगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंस्पेक्टर राज बार बार उसकी चेकिंग होती रहेगी, ये होती रहेगी, दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए। मतलब उद्योग बुरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गए। ये इंदिरा गांधी के समय के मेन हाइलाइट्स हैं। मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद फ्रेंड्स राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी मैं आपको केवल तीन बातें बताना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था संबंधी जो उन्होंने कदम उठाए वो केवल तीन कदम, और उनके इन तीन कदमों में आपको उदारीकरण की पदचाप सुनाई दे देगी। मतलब मिसेस गांधी का पीरियड आपको लगा होगा कि यार ये तो एकदम बिल्कुल कड़ाई का पीरियड था, जैसे कि अर्थव्यवस्था को या उद्योगों को एकदम कस दिया गया है, बांध दिया गया है, वो सांस नहीं ले सकते अपनी तरफ से, वो हिलडुल नहीं सकते, आपको लग रहा होगा जैसा मैंने बताया। राजीव गांधी ने उसमें थोड़ी सी ढिलाई दी, उदारीकरण तो पूरी तरह से ढिलाई देना ही है ना। इसका मतलब है कि जो कदम जो चाप होती, जो पदों की जो आवाज होती है वो सुनाई देने लगी राजीव गांधी जी के समय में। इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत में उदारीकरण के जो लक्षण है वो राजीव गांधी के समय से दिखाई देने लगे थे। अब उन्होंने क्या तीन मुख्य बातें जो की हैं वो देख लीजिए। एक तो लाइसेंस प्रक्रिया को उन्होंने सरल बना दिया, यानी कि अगर आपको उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस लेने हैं तो उसके लिए ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसको सरल बनाया। लेकिन अभी उतना सरल नहीं बनाया, अभी भी काफी दिक्कतें थी, क्योंकि शुरू में दिक्कतें ही इतनी ज्यादा थी कि आप उसको कितना सरल बना पाते। इसके बाद उन्होंने आयात निर्यात में ढील दी कि आप विदेशों से कोई चीज आयात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी ढिलाई दे दी गई, अपना सामान निर्यात करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ढिलाई दे दी गई। और फिर अगर आप निर्यात करना चाह रहे हैं, तीसरा पॉइंट है, तो सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहनों की भी घोषणा की कि सरकार आपको ये उसमें लाभ देगी, ये इंसेंटिव्स देगी। ये तीन मुख्य कदम रहे, पहला लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बना दिया, दूसरा आयात और निर्यात के नियमों में ढिलाई दे दी गई, और तीसरा निर्यात के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई। जब राजीव गांधी के समय में यह हुआ तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि राजीव गांधी से पहले जो हमारी जीडीपी की दर थी वो लगभग 3.5% पर एनम थी प्रतिवर्ष। राजीव गांधी के इन कदमों के कारण वो बढ़कर के 5.5 हो गई, 5.5 हो गई। तो इससे यह संकेत मिला कि नहीं यार, अगर ढिलाई दी गई तो हमारे देश का आर्थिक विकास हो सकता है। तो मित्रों, ये राजीव गांधी के कुछ कदम थे। अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपको दो एक मिनट के लिए इस बात के कर दूंगा कि यहां तक जब हम आए हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या हो गई थी, इसके परिणाम क्या हुए। इंदिरा गांधी से लेकर के और 1991 तक की जो नीतियां रही उस समय हमारे अर्थव्यवस्था पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ा उस समय तक। देखिए, सीधी सी बात थी कि चूंकि अब उद्यमों पर आप इतना कड़ाई कर रहे हैं तो वो हतोत्साहित होते थे, उनको कहीं से प्रोत्साहन मिलता ही नहीं था। चूंकि सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, सब कुछ सरकार निर्धारित कर रही, कीमत निर्धारण कर रही है, उसकी मात्रा निर्धारण कर रही है, कहां उद्योग खुलेंगे इसका निर्धारण कर रही है, तो सीधी सी बात है कि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का अभाव हो गया, उनमें कंपटीशन खत्म हो गया। अगर कंपटीशन खत्म हो गया तो क्यों इनोवेशन के लिए काम करेंगे, क्यों नई नई आविष्कार करेंगे कि हमारा उत्पादन लागत कम हो, नॉट एट ऑल। तो उनमें जो प्रेरणा होनी चाहिए थी वो खत्म हो गई, और लाइसेंस राज्य की जो शुरुआत हुई उसके कारण जो भ्रष्टाचार औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा वो अति की सीमा तक था, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस कौन देगा, सरकारी अधिकारी देंगे। तो यहां से जब लाइसेंस लेने और देने का मामला शुरू हुआ दोस्तों, तो यहीं से जिसको आप कहते हैं याराना पूंजीवाद, उसकी शुरुआत हुई। याराना पूंजीवाद यानी कि नेता और जो पूंजीपति उद्योगपति हैं और जो नौकरशाह हैं, इनके आपस में दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद बस ये आपस में सारा बंदरबांट होने लगा। महंगाई में लगातार वृद्धि होती चली गई क्योंकि उत्पादन उस तरीके से हो नहीं रहे थे। ब्लैक मार्केटिंग की शुरुआत हो गई क्योंकि इतना उत्पादन नहीं हो रहा था कि वो लोगों की मांगों की पूर्ति कर सके, तो आप काले बाजार से सामान खरीदिए। जितने भी उद्योग थे उस पर उच्च वर्ग का नियंत्रण हो गया, सामान्य व्यक्ति की ये औकात ही नहीं रह गई कि वो कहीं उद्योग खोल सके। चूंकि समाजवादी व्यवस्था को लेकर के चल रहे थे तो जो श्रमिक संगठन थे उनको आपने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, तो श्रमिकों के संकट खड़े होने लगे कि यहां हड़ताल हो रही है या फलाना हो रहा है, लेकिन उद्योग बंद नहीं किए जा सकते थे, तो श्रमिकों ने भी दुनिया भर के संकट खड़े करने शुरू कर दिए, और वो नियम अभी तक चल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि अक्सर आर्टिकल्स में पढ़ते होंगे कि भारत को श्रम सुधार करना चाहिए, श्रम सुधार करना चाहिए। उद्योगपतियों की मांग है कि लेबर लॉ को ठीक किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए भी काम नहीं किया, चूंकि हमारे उद्योग उतने उन्नत नहीं थे तो वर्ल्ड मार्केट में भी हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम वहां लोग कॉम्पीट कर सकें। और सरकार ने छोटे जो लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग थे उनके लिए लगभग 800 वस्तुएं सुरक्षित कर दी कि इन वस्तुओं का उत्पादन केवल सूक्ष्म और लघु उद्योगों में होगा, इस पर बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते। तो वे वस्तुएं और भी ज्यादा महंगी होने लगी क्योंकि जो लघु उद्योग होते थे वो उनको उतने सस्ते रेट में उत्पादित नहीं कर पाते थे। तो कुल मिलाकर के मित्रों, जो थोड़े समय में मैं आपको बता सकता था, ये एक इम्पैक्ट हुआ, परिणाम हुआ जो हमारी अब तक की आर्थिक नीतियां थी उसका। और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जानकारी तो अब आपको हो गई होगी 1990 के पहले के भारत के आर्थिक परिदृश्य की। अब हम इसी आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में उदारीकरण की चर्चा करेंगे, तब आप पाएंगे कि कैसे अब उदारीकरण को समझना आपके लिए आसान हो गया है। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।